नमस्कार, दी प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं फाल्गुनी शर्मा आज आपको राज्यसभा सांसद सागरिका घोष का एक लेख पढ़कर सुनाने जा रही हूँ। मोदी फिर चुनावी मंत्री बन गए हैं। हाथी की सफारी, CAA, मंदिरों की यात्रा, कीमतों में कटौती। सागरिका अपने लेख में लिखती हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि चुनाव नजदीक है जब चुनावी मंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री देश भर में लगातार यात्राएं करना शुरू करेंगे, मंदिरों में जाएंगे, परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और उन कानूनों को अधिसूचित करेंगे जो वर्षों से निष्क्रिय पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 3 साल से पश्चिम बंगाल जाने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने 2021 में विधानसभा चुनाव के लिए इसका दौरा किया, जिसमें भाजपा ने 77 सीटें जीती और राज्य में विपक्ष की भूमिका में आ गई। चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसा लग रहा था कि मोदी पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से भूल गए हैं, लेकिन अचानक लोकसभा चुनाव सामने आते ही मोदी ने वहां 1 या 2 बार नहीं बल्कि 15 दिन के भीतर 3 बार यात्राएं की और ढेर सारे वादे किए। गंभीर वास्तविकता यह है कि पश्चिम बंगाल में 59 लाख मनरेगा मजदूरों को उनका मानदेय नहीं मिला है और 11.36 लाख लोगों के पास घर नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार ने केंद्रीय योजनाओं के लिए राज्य को धन आवंटित नहीं किया है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, ये चुनाव का मौसम है और चुनावी मंत्री उन सभी चीज़ों का वादा करेंगे जो वे प्रधानमंत्री रहते हुए कभी नहीं करेंगे। असल में प्रधानमंत्री और चुनावी मंत्री 2 अलग अलग संस्थाएं दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री LPG की कीमतें बढ़ाते रहते हैं, जबकि चुनावी मंत्री उनमें कटौती करते हैं। आगामी चुनाव से पहले चुनावी मंत्री ने रसोई गैस की कीमतों में अचानक 100 रुपये की कटौती कर दी। वर्षों तक जब वैश्विक गैस की कीमतें कम हुई तो मोदी सरकार ने उपभोक्ता पर कम लागत का भार नहीं डाला। इसके बजाय इसे सरकारी वित्त को बढ़ाने के लिए रसोई गैस की कीमतों में क्रमिक वृद्धि की। 2020-21 के बीच LPG की कीमतें 7 बार बढ़ाई गई। अब अचानक ये कीमतें नीचे आ गई। ये केवल LPG नहीं है, चुनाव से कुछ दिन पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2 रुपये तक घटाई गईं। उन वर्षों में जब चुनाव नहीं थे, जैसे कि 2022 में, मोदी सरकार पेट्रोल की कीमत बढ़ाती रही ताकि अप्रैल 2022 तक यह 100 रुपये प्रति लीटर के स्तर को पार कर जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव मंत्री केवल चुनाव के दौरान ही उपभोक्ताओं की परेशानियों के बारे में सोचते हैं। आप जानते हैं कि यह चुनावी मौसम है जब चुनावी मंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री अचानक केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों का दौरा करना शुरू करते हैं और दक्षिण की जीवन संस्कृति और उपलब्धियों पर भाषण देते हैं। अब 1 सेकंड रुकिए, जब तमिलनाडु बाढ़ राहत के लिए धन की मांग कर रहा था तो मोदी सरकार कहाँ थी? मोदी सरकार ने केंद्र द्वारा धन आवंटित ना करने पर केरल और तमिलनाडु द्वारा जारी विरोध प्रदर्शनों को क्यों नहीं संबोधित किया? PM ने तमिलनाडु के नागरिकों को आश्वस्त करने के लिए क्या किया है कि हिंदी थोपी जही जाएगी? ये चिंता हल ही में गीतकार वेरामुथु ने व्यक्त की थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि मोदी सरकार न केवल धन रोककर राज्यों को पंगु बना रही है बल्कि उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता को मिटाने की भी कोशिश कर रही है। BJP के सोशल मीडिया सेनाएं केरल के कम्युनिस्टों को जिहादियों का घर कहकर कलंकित क्यों करती रहती हैं? क्या मोदी ने खुद वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी का मजाक नहीं उड़ाया, जहां अल्पसंख्यक ही बहुमत हैं? लेकिन चुनावी मौसम में चुनावी मंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री को केरल में असंख्य फोटो सेशन में केरल की गर्मजोशी से भाषण देते हुए देखा जा सकता है। क्या चुनाव के बाद भी यह गर्माहट बरकरार रहेगी? चुनावों से पहले चुनावी मंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री ने अचानक 2019 में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित कर दिया। 4 साल तक अधिनियम निष्क्रिय रहा और धर्म आधारित नागरिकता का मुद्दा, जिसे व्यापक रूप से उछाल दिया, 2019-20 में देश भर में विरोध प्रदर्शनों को भड़कने दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा भय को दूर करने या सुलह प्रक्रिया करने की कोई कोशिश नहीं की गई। अब चुनाव से पहले धार्मिक ध्रुवीकरण बनाने और पश्चिम बंगाल में सीटों की दृढ़ खोज का लक्ष्य है, जहां BJP मतुआ और राजवंशी जैसे समुदायों के समर्थन पर भरोसा कर रही है जो CAA को चाहता है। CAA अधिसूचित है, शायद चुनाव अधिक बार होने चाहिए, इसलिए चुनावी मंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री अंततः लंबे समय से लंबे कानूनों को अधिसूचित कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ये चुनाव का मौसम है जब चुनावी मंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री विभिन्न फोटो सेशन में शामिल हो रहे हैं। उन्हें 9 मार्च को मणिपुर से बमुश्किल 300 किलोमीटर दूर असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक हाथी की सफारी करते देखा गया। मणिपुर में 1 साल की हिंसा में 200 से अधिक लोग मारे गए, लेकिन राज्य शायद फोटो परफेक्ट सेशन नहीं बना पाएगा, इसलिए मोदी मणिपुर का दौरा नहीं कर रहे और शायद ही कभी इसका उल्लेख भी करते हैं। आखिरकार जब आप एक चुनावी मंत्री हैं तो तस्वीरों में विस्मय और प्रशंसा होनी चाहिए, जैसे कि प्राचीन शहर द्वारका के तट पर पानी के भीतर गोताखोरी अभियान के दौरान जब मोदी की अरब सागर में योग करते हुए तस्वीर खींची गई। चुनावी मौसम में चुनावी मंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नवीनतम अग्नि 5 मिसाइल के प्रक्षेपण का श्रेय लेने के लिए दौड़ पड़े, जबकि यह परियोजना मनमोहन सिंह सरकार के समय से ही डेवलपमेंट में है। आप जानते हैं कि यह चुनाव का मौसम है जब मोदी के लिए रोमांचक सार्वजनिक संबोधन के बारे में कानाफूसी अभियान शुरू होता है और समाचार चैनल 24 घंटे कवरेज में डूब जाते हैं, लेकिन अंत में चुनावी मंत्री की ओर से रक्षा अनुसंधान विकास संगठन को बधाई देने वाला केवल एक्स पर एक पोस्ट मिलता है। तमाशे की यह राजनीति या चुनावी मंत्री की तरह काम करने वाले एक उच्च दृश्यता वाले सुपर एक्टिव प्रधानमंत्री बहुत खतरनाक हैं। ये चुनाव प्रचार को शासन से अलग करता है और प्रशासन को राजनीतिक गतिविधियों के लिए अप्रासंगिक बना देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेलवे में सुरक्षा मानक गिर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में एक घातक टक्कर जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई क्योंकि ड्राइवर अपने फोन पर क्रिकेट देख रहे थे। ये कितने सरकारी पद खाली हैं, ये चौंका देने वाली 20 से 25 वर्ष की आयु के 42% लोग बेरोजगार हैं, या कि भारतीय अब अमेरिका में अवैध प्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है, जब तक कि चुनावी मंत्री चुनाव के समय तमाशा पर तमाशा बनाते रहते हैं। मतदाताओं को किसी शासन के रिकॉर्ड का मूल्यांकन करने की अनुमति नहीं है, इसके बजाय उन्हें पानी के भीतर गोताखोरी और हाथी सफारी, मंदिर के दौरे और आकर्षक घोषणाओं से मंत्रमुग्ध होने के लिए धमकाया जाता है, फिर उनसे भ्रमपूर्ण उत्साह के बुलबुले में अपने वोट का इस्तेमाल करने की उम्मीद की जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार उद्धार करती है या नहीं, बस पीएम के इर्द गिर्द मीडिया की चकाचौंध को देखकर हैरान रहिए, माफ कीजिएगा चुनावी मंत्री, और सम्मोहित श्रद्धा की मुद्रा में अपना वोट डालिए। भारतीय मतदाताओं को निष्क्रिय दर्शक बना दिया गया, चुनाव के समय घोषणाओं की झड़ी के कारण तर्कसंगत और व्यवस्थित शासन पीछे चला गया, चुनाव के बाद में उन्हें कैसे लागू किया जाएगा इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। 2022 में नागरिकों को पता चला कि मोदी सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के लिए 78% से अधिक धन विज्ञापन पर खर्च किया गया। ऐसा तब होता है जब कोई प्रधानमंत्री केवल चुनावी मंत्री की तरह काम करे। दी प्रिंट के सुप्रभात में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।